ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संसद के अवरोध को खत्म करने के विषय में सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श। राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा 16वीं पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक सुशासन सामाजिक न्याय और समृद्धि है मुख्य लक्ष्य। क्रिकेटर संदीप लामिशाने को हाईकोर्ट ने दिया क्लीन चिट। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना सरकार की नीति है प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। और अमेरिका ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर टैरिफ बढ़ाया 4 गुना। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केंद्र और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच भेंटवार्ता हुई है। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने के बीच अवरूद्ध संसद संचालन लगायत के विषय में विचार विमर्श हुआ। संघीय संसद के दोनों सदनों में उत्पन्न गतिरोध को खत्म करने के विषय में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड और प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घेमिरे के बीच विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज हुए विचार विमर्श में सभामुख घेमिरे ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलों से तत्काल सहमति करने का प्रधानमंत्री प्रचंड से आग्रह किया। सभामुख घेमिरे ने कहा कि संसद संचालन होने के बाद कुछ विधेयक तत्काल ही पारित किए जाएंगे और कुछ विधेयकों को समिति में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि निवेश प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई है। नेपाल और यूरोपीय संघ के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित नेपाल ईयू बिजनेस फोरम को उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सरकार व्यापार के लिए खुलापन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहते हुए कि सरकार ने नव प्रवर्तन और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति अपनाई है, प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि नेपाल की एक मजबूत आर्थिक संरचना बनाने की नीति अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाकर आर्थिक विस्तार में मदद करेगी। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के नेपाल के प्रयासों में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सहकार्य करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने सन 2026 तक अति कम विकसित देश की श्रेणी से बाहर निकलने और सन 2030 तक दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विदेशी भागीदारों से पर्याप्त मात्रा में निवेश और आवश्यक प्रविधि हस्तांतरण की आवश्यकता बताई। ये बताते हुए कि सरकार ने हाल ही में 50 करोड़ तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवेदन के लिए स्वचालित मार्ग शुरू किया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे नेपाल में व्यवस्थापकीय दक्षता और पूंजी आएगी। राष्ट्रीय योजना आयोग ने मंत्रिपरिषद की बैठक से कल पारित की गई 16वीं पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक की है। योजना के प्रमुख अंतर्वस्तु सार्वजनिक करने के लिए आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के उपाध्यक्ष डॉ मीन बहादुर श्रेष्ठ ने कहा कि 16वीं पंचवर्षीय योजना ने सुशासन सामाजिक न्याय और समृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाया है। गौरतलब है 16वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वर्ष 2085-86 तक प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 2,351 अमेरिकी डॉलर पहुंचाने और नेपाल के कुल गृहस्थ उत्पादन 100 खरब रुपए से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह 16वीं योजना ने 2085-86 तक में नेपाल का आर्थिक वृद्धि दर 7.3% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहा है कि उनकी पार्टी मर्यादित संसदीय अभ्यास के लिए लगातार समर्पित रही है। आज संसद भवन नया वानेश्वर में पार्टी के संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष ओली ने कहा कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल द्वारा संसद में किए जा रहे विरोध से घबराने की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष ओली ने कहा कि नेपाली कांग्रेस बिना सबूत और गलती के किसी पर आरोप लगा रही है, इसलिए संसदीय समिति का गठन नहीं किया जा सकता है और अब संसद बैठक अवरूद्ध नहीं होगी। अध्यक्ष ओली ने कहा कि देश और जनता के प्रति सांसदों को गंभीर होने की जरूरत है। नेकपा एकीकृत समाजवादी की केंद्रीय कमेटी की बैठक आज भी जारी रही। ललितपुर के बालकुमारी में जारी बैठक में पार्टी के आगामी राष्ट्रीय महाधिवेशन में पेश किए जाने वाले प्रतिवेदन के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा ने दी। नेकपा एकीकृत समाजवादी का राष्ट्रीय महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 16 से 20 गति तक काठमांडू में होने को तय हुआ है। क्रिकेटर संदीप लामिछाने को रेप मामले में हाईकोर्ट पाटन ने क्लीन चिट दी है। न्यायाधीश द्वय सुदर्शन देव भट्ट और अंजू प्रेती की पीठ ने क्रिकेटर लामिछाने को रेप मामले में क्लीन चिट दिया है। ये जानकारी हाईकोर्ट पाटन ने दी। इससे पहले जिला अदालत काठमांडू ने लामिछाने को रेप मामले में दोषी करार देते हुए 8 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की बनाई इलेक्ट्रॉनिक कारों, सोलर पैनल, स्टील और अन्य उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ताजा बदलावों के तहत चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 100% सीमा शुल्क भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये बढ़ोतरी अनुचित नीतियों के जवाब में और अमेरिका में नौकरियां सुरक्षित रखने के मकसद से की गई है। चीन ने कहा है कि वो इस बढ़ोतरी का विरोध करता है और जल्द जवाबी कार्रवाई करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये टैरिफ व्यापक स्तर पर केवल प्रतीकात्मक है और इसका मकसद इस चुनावी साल में वोट जुटाना है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मंगलवार को जिन टैरिफ का ऐलान किया गया है उससे करीब 18 अरब डॉलर के आयात पर असर पड़ेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के अवरोध को खत्म करने के विषय में सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श। राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा 16वीं पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक सुशासन सामाजिक न्याय और समृद्धि है मुख्य लक्ष्य। क्रिकेटर संदीप लामिछाने को हाईकोर्ट ने दिया क्लीन चीट। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना सरकार की नीति है, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। और अमेरिका ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर टैरिफ बढ़ाया 4 गुना। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।